समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सरबजीत कौर। सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Akarshita, a very good evening and an awesome welcome to our lovely listeners. Yes, next half an hour, jam-packed with selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, tributes and of course much more. And Akarshita, I don't think we should keep our listeners waiting anymore.
Right.
Let's begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone of development projects worth over 7,600 crore rupees in Maharashtra through video conferencing.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नकली दवाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया।
RBI keeps repo rate unchanged at 6.50% for 10th time in a row.
मोजाम्बिक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी।
In badminton, Lakshya Sen advances to men's singles pre-quarter finals of BWF Arctic Open 2024 in Finland today.
और दुबई में आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा।
Listeners, in our program Parikrama, now it is time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today, we shall talk about World Post Day. For a century and a half, the postal system has been a lifeline for people, governments and businesses worldwide. World Post Day is celebrated annually on October the 9th to raise awareness about the role of the postal sector in our everyday lives as well as its contribution to global, social and economic development. It was during 255 BC when the first known postal document was found in Egypt. During the 17th and 18th centuries, bilateral postal agreements were used to govern the exchange of mail among countries. By the 19th century, the network of bilateral agreements became so complex that it affected negatively the trade and commercial development of countries. Now the need arose for making this postal network streamlined and simple at the international level.
पहले की चिट्ठियों में होती थी कई गांवों की बातें, बातें होती थी झूलों की, बातें होती थी सावन की, बातें घर आंगन की। पूछा करती थी चिट्ठी में दादी माँ का हाल, लिखती फागुन में आ जाओ खेलेंगे रंग गुलाल। जी हाँ, पहले के जमाने में डाकिया किसी तोहफे से कम नहीं थे। चिट्ठियों के आ जाने से लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाया करती थी, वर्षों का इंतजार खत्म हो जाया करता था। आज उसी काम को मोबाइल और इंटरनेट ने काफी आसान बना दिया है, लेकिन फिर भी वर्षों से डाक व्यवस्था दुनिया भर में लोगों, सरकारों और व्यवसायों के लिए जीवन रेखा रही है। विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ताकि हमारे रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, साथ ही वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में भी बताया जा सके। 1840 में इंग्लैंड में सर रोलैंड हिल ने एक प्रणाली शुरू की, जिसके द्वारा पत्रों पर डाक शुल्क पूर्व भुगतान करना पड़ता था। इसके अलावा घरेलू सेवा में वजन की एक निश्चित सीमा वाले सभी पत्रों के लिए समान दरें ली जाती थी, भले ही यात्रा की गई दूरी कुछ भी हो। उन्होंने दुनिया का पहला डाक टिकट भी पेश किया। 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में उत्तरी जर्मन परिसंघ के एक वरिष्ठ डाक अधिकारी हेनरिक वॉन स्टीफन ने एक अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ की योजना तैयार की। उनके सुझाव के आधार पर स्विस सरकार ने 15 सितंबर 1874 को बर्न में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 22 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसी वर्ष 9 अक्टूबर को जनरल पोस्टल यूनियन की स्थापना करके विश्व डाक दिवस की शुरुआत की गई। 1878 में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कर दिया गया। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय मेल के कुशल आदान प्रदान को सक्षम करने की दिशा में एक बड़ा कदम था जिसमें बदले में आधुनिक वैश्विक संचार की नींव रखती।
Akshita, that's a great piece of historical information. And but I would like to add in here that whatever be the advancement in technology, the right. feel and touch of communication by post cannot be substituted
right.
by anything.
That's true. वो पहले ज़माने की चिट्ठियाँ, उनकी बात ही कुछ और हुआ करती थी।
Absolutely.
हम कितने दिनों तक उसका इंतजार करते थे और आज आप देखते हैं कि हम एक टेक्स्ट सेकंड्स में कर देते हैं और जब वो रिप्लाई नहीं मिलता हम कितने ज्यादा डिस्पेरेट हो जाते हैं। लेकिन वो इंतजार का दौर था और वो एक खुशियां अलग थी, वो
बहुत ही खूबसूरत दौर था।
सच है।
सो इन 2015 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड कमिटेड देमसेल्व्स टू वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स व्हिच एम टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, फाइट इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस एंड टेक एक्शन टू रिवर्स क्लाइमेट चेंज, टू नेम जस्ट सम ऑफ दीज 7 अग्रीड न्यू गोल्स। Playing its part in this global effort, the post today has a more relevant role than ever by providing infrastructure for development. This year, listeners, marks 150 years of the Universal Postal Union, and the world will celebrate World Post Day with the theme 150 years of enabling communication and empowering people across nations. In 1969, World Post Day was declared by the Universal Postal Union Congress in Tokyo to promote the importance of postal services and their role in connecting people globally. Since its inception, World Post Day has been used to focus on the vital role of postal services in communication, trade and development. Today, the postal system is necessary for e-commerce, logistics and financial inclusion.
जी हाँ, ये उल्लेख करना सार्थक है कि दुनिया भर में 1.5 बिलियन से अधिक लोग वैश्विक वयस्क आबादी का लगभग 28% डाक नेटवर्क के माध्यम से भुगतान, धन हस्तांतरण और बचत जैसी बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच रखते हैं। वैश्विक पार्सल बाजार 2018 में 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। दुनिया में 53% डाकघर बीमा प्रदान करते हैं जो कम आय वाले व्यक्तियों की लचीलापन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा है। राजस्व की अनियमित और अप्रत्याशित स्तर के साथ वैश्विक स्तर पर 6,50,000 से अधिक कार्यालयों और 5.3 मिलियन कर्मचारियों वाले नेटवर्क और कई सरकारों से सार्वजनिक सेवा जनादेश के साथ पोस्ट किसी को भी कहीं भी सेवाएं प्रदान करने की अपनी क्षमता में अद्वितीय है। और सरबजीत, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहां हम देखते हैं कि आज भी जो ये पोस्ट का जरिया है, संचार का बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है, आज भी बहुत बड़ा माध्यम है। और जो कम आय वाले व्यक्ति हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, वो निवेश करते हैं इसमें, पोस्टल सर्विसेज में, और काफी उनको फायदा भी पहुंचता है।
जी आकर्षिता, एंड इंडीड वी कैन से दैट इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक एंड सोशल वेलफेयर।
ट्रू। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Well, listeners, the Odisha government has launched a pioneering initiative, Gramodaya program, to transform the lives of people in left-wing extremism-affected areas. We have a detailed report on this.
Gramodaya program aims to provide 100% benefit of government schemes to every village, community and individual across 583 villages in 10 districts. Communities in left-wing extremism affected areas will gain improved access to government services, leading to enhanced infrastructure, healthcare, education and economic opportunities. This inclusive approach shows Odisha's commitment to addressing the needs of of marginalized communities. Convergence is key to Gramodaya's success. All departments will work together to ensure seamless implementation overseen by a state-level monitoring committee headed by the Chief Secretary. District and block-level committees provide additional support while a dashboard enables real-time monitoring. It promises to bring tangible positive change to those who need it most. With its focus on inclusive development, this program embodies Orissa's dedication to ensuring no community is left behind. For Parikrama, Itishri Singh Rathor, Akashwani Samachar, Katak.
सरबजीत, हम देखते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो पोषण की उनकी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, खासकर उनकी जिनके आय कम है या जो मजदूरी करती हैं ऐसी महिलाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक योजना सरकार ने लाई है, मातृ वंदन योजना, और ये भारत में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा, पोषण और स्वास्थ्य का देखभाल रखने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरूआत की गई थी, और मध्य प्रदेश में इस योजना से महिलाओं को काफी लाभ हो रहा है। तो आइए जानते हैं हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा से उनकी ये रिपोर्ट।
कामकाज पर जाने और पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने के कारण महिलाओं में गर्भावस्था में पोषण हमेशा हाशिए पर रहता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करने और द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश की करीब 43 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिला है। सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश योजना के प्रारंभ से 2022-23 तक निरंतर 5 सालों से राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के प्रारंभ से अब तक लगभग 43,81,000 हितग्राहियों का पंजीयन कर 1,210 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ हर पात्र हितग्राही को मिले, इसके लिए महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान संकल्प के तहत मातृत्व तो लाभ सप्ताह का आयोजन किया गया। इसमें लाभार्थियों के साथ इंटरएक्टिव सत्रों के माध्यम से योजना के लाभों के प्रभाव का आकलन किया गया और फिर उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। परिक्रमा के लिए भोपाल से संजीव शर्मा।
सो आकर्षिता, हेल्दी मदरहुड, हेल्दी चिल्ड्रन, हेल्दी सोसाइटी। मूविंग ऑन फर्दर इन द प्रोग्राम टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बेसिक राइट टू शेल्टर, अ प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली टूडे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स Tokhan Sahu attended the event. Speaking on the occasion, Mr. Sahu said that the government is focused towards capitalizing on the youth's potential and urged the youth to step forward in the development of the country. We have a detailed report on this from our correspondent.
The theme of this year's World Habitat Day is engaging youth to create a better urban future. The theme is aimed at recognizing the potential of youth in building an economically as well as environmentally sustainable society. During the event, prizes were awarded to the winners of a painting competition organized by Housing and Urban Development Corporation for children and specially abled, and Hudco Awards for best practices to improve the living environment. Short videos by the UN Habitat and the National Institute of Urban Affairs on the World Habitat Day theme were also screened during the event. The event also witnessed the unveiling of special publications as well as newsletters based on the World Habitat Day theme, including Urbanization, Sustainable Development, Smart Cities, among others. For Parikrama, Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
देश में त्योहारों का सिलसिला चल पड़ा है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक दशहरा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरबजीत
जी, and to let our listeners know more about the festivities in Andhra Pradesh, we have details from our Vijayawada correspondent.
Devotees across Andhra Pradesh are gripped with spiritual fervor as Dasara celebrations taking place in all Durga temples, with the Indrakiladri temple in Vijayawada being the focal point. The goddess Durga is adorned in different attires on each day of the 9-day festival. Today marks a significant day in Dasara celebrations on the auspicious sighting of the Mula Nakshatram. Goddess Durga is being worshipped as Goddess Saraswati today. Chief Minister of Andhra Pradesh N. Chandrababu Naidu will visit the temple to present silk clothes to the deity. In Tirumala, Salakatla Brahmotsavam is being celebrated with grandeur. Yesterday, over 3 lakh devotees witnessed the Garuda Vahana Seva in Tirumala. Today, Lord Venkateswara, also referred to as Lord Malayappa Swami, was adorned as Sri Ram Avataram. Gaja Vahana Seva will take place this evening. Sai Sisla for Parikrama, Akash Shwani, Vijayawada.
Listeners, you are with us on 100.1 MHz in our program Parikrama. We shall now take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
9th October is the death anniversary of a legendary freedom fighter, Dr. Saifuddin Kichlu, hailed as the hero of the Jallianwala Bagh protests against the draconian Rowlatt Act of 1919. Dr. Kichlu was also a founding leader of the Naujawan Bharat Sabha, which rallied thousands of students and young Indians to the nationalist cause. He was born on 15th January in 1888 in a Kashmiri family which had moved to Amritsar. A student of sharp intellect, Kichlu completed his bachelor's from Cambridge University in London and obtained his PhD from Germany.
His revolutionary aspirations dated back to his Cambridge days when he actively participated in Majlis, a society formed by Indian students to discuss India's colonial wars. It was through these meetings that he met India's future Prime Minister, Jawaharlal Nehru. Kichlu returned to India in 1913 and started practicing law in Amritsar. Professor Amandeep Bal, head of the Department of History in Guru Nanak Dev University, Amritsar, says, after his return from abroad, one thing that stood out vividly was Dr. Kichlu's devotion and love for the nation.
Dr. Saifuddin Kichlu, jab aaye to unhone aake dekha ki agar hame Hindustan ko aage leke jana hai to hame milke kaam karna chahiye. Yahi wajah thi ki agle dinon mein unhone kaafi sari aisi activities mein participate kiya ki yahan pe ye cheeze promote ho jaye.
Deeply influenced by Mahatma Gandhi and the national movement, Dr. Kichlu left his legal practice to join the cause. In March 1919, the Imperial Legislative Council passed the Rowlatt Act, which empowered the government to put people in jail without trial.
Dr. Saifuddin Kichlu was one of the leaders who protested against the legislation. Professor Amandeep Bal says Dr. Kichlu's oratory was very powerful.
उन दिनों में बड़ी-बड़ी मीटिंग्स होती थी जिनमें लोग इनको सुनने के लिए जाते थे क्योंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू बहुत बढ़िया ओरेटर थे वो हिंदुस्तान की बात भी करते थे कम्युनल यूनिटी की भी बात करते थे साथ में सत्याग्रह की बात करते थे तो लोग उनके साथ जुड़ते थे.
On 9th April 1919, Dr. Kichlu and another freedom fighter, Dr. Satyapal, helmed an anti-government procession that progressed through the heart of Amritsar. The two leaders were arrested and interned in Dharamshala. On 13th April 1919, a meeting was called in the Jallianwala Bagh to protest the arrest. As the meeting was underway, British Brigadier General Reginald Dyer ordered his troops to open fire on the peaceful protesters.
The troops fired 1,650 rounds of bullets at the gathering, killing around 1,000 as per the Indian National Congress. The government released Dr. Kichlu in December 1919. He was a staunch advocate of communal harmony, strongly opposing the idea of partition along religious lines.
Dr. Kichlu suffered a cardiac arrest and passed away on 9th October 1963. On his death, Jawaharlal Nehru remarked that he lost a very dear friend who was a brave and steadfast captain in the struggle for India's freedom.
It was also on this day in 1942, freedom fighter from Punjab, Satyavati Devi, made a daring act of replacing the British flag with the Congress flag in Lahore jail. Popularly known as BG or Mataji, Satyavati had been arrested on August 26, 1942, along with her three young children. While in prison, she organized a protest over the deplorable conditions political prisoners were forced to live in. At 5 a.m. on October 9, 1942, she rallied fellow prisoners and replaced the British flag atop the women's jail with the Congress flag.
Satyavati Devi, the granddaughter of Swami Shraddhanand and the mother of former Vice President of India, Krishan Kant, hosted freedom fighters such as Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Bhagat Singh. She often fed Bhagat Singh with her own hands. She extended hospitality to the freedom fighters, even as her husband, Lala Achyut Ram, a freedom fighter who was popularly known as the Gandhi of Punjab, spent considerable time in British jails in Lahore. On the night before he left Lahore, nationalist leader Chandrashekhar Azad hid in her house. She left for her heavenly abode on 26th October 2010. Satyavati College of the University of Delhi is named after the great freedom fighter.
And now news from the world of business. The domestic benchmark indices Sensex and Nifty ended in negative territory, retreating from gains secured in the intraday trade today. At close, the Sensex declined by 168 points or 0.2% to close at 81,467 and the Nifty decreased by 31 points or 0.1% to settle at 24,982. In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading at 75,230 rupees for 10 grams. Silver 999 fine is trading at 89,370 per 1 kilogram when reports last came in. And in sports news, in badminton, Indian shuttler Lakshya Sen will face Denmark's Rasmus Kimki, while Kiran George is set to take on Wang Zhu Li of Chinese Taipei in men's singles first round match of Arctic Open 2024 in Vantaa, Finland today. In women's singles, two-time Olympic medalist PV Sindhu crashed out in the first round yesterday, losing to Canada's Michelle Lee. However, India's Akarshi Kashyap and Malvika Bansal advanced to the round of 16. Kashyap defeated Germany's Yuan Li 21-19, 21-14, while Bansal pulled off an upset by defeating world number 23 Song Shunyun of Taipei 21-19, 24-22.
वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आज दिल्ली के अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश से खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में ग्रुप ए में आज शाम भारत अपने तीसरे मैच में श्रीलंका के साथ खेलेगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आज भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक रविन्द्र जैन की पुण्यतिथि है। मुख्यतः उन्हें भजन गायक के रूप में ख्याति मिली थी। उन्होंने रामानंद सागर के महाकाव्य रामायण सहित कई फिल्मों और टीवी शोज के लिए संगीत तैयार किया। जब भी रामायण के संगीत की बात आती है तो रविन्द्र जैन का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि रविन्द्र जैन धारावाहिक रामायण के संगीतकार थे। रविन्द्र जैन ने दृश्य श्रव्य माध्यम में केवल श्रव्य के सहारे ऐसा इतिहास रचा जो युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय बन गया। उनके प्रसिद्ध गीतों में एक राधा एक मीरा, अखियों के झरोखों से कौन दिशा में लेके, नदियों के पार और सुन साहिबा सुन जैसे गीत शामिल हैं। आइए सुनते हैं उनके गानों का ये मेडले।
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, बिन पग धोए सुन मोर राजा, बिन पग धोए सुन दाता नहीं, गंगा पार कर ही हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो।
एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी।
Listeners, we are also paying tribute to Nathisan Ramani. Ramani was awarded the Madras Music Academy's Sangeetha Kalanidhi in 1996. Today is Ramani's death anniversary. In fact, he is credited with introducing the long flute into Carnatic music. We have this rendition for you.
आज प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार कवि तथा साहित्यकार गोप बंधु दास की जयंती है। ये उड़ीसा के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे। गोप बंधु दास को उत्कल मणि के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा के लोग इन्हें दरिद्र सखा अर्थात दरिद्र की सखा के रूप में याद करते हैं। गोप बंधु दास ने उत्कल के विभिन्न अंचलों को संगठित करके पूर्ण उड़ीसा राज्य बनाने की जी जान से कोशिश की थी। उत्कल के दैनिक पत्र समाज के ये संस्थापक भी थे।
वी आर रिमेम्बरिंग तेमसुलु आओ ऑन हर डेथ एनिवर्सरी टुडे। पोएट, फिक्शन राइटर, एथनोग्राफर, आओ वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर शी रिटायर्ड इन द ईयर 2010। तेमसुला वॉज अवार्डेड द पद्मश्री अवार्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड एजुकेशन। हर वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन टू एसमीज, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी एंड कन्नडा। तेमसुला पब्लिश्ड 7 पोएटिक वर्क्स इंक्लूडिंग सॉन्ग्स दैट टेल, सॉन्ग्स दैट ट्राई टू से, सॉन्ग्स ऑफ मेनी मूड्स एंड सॉन्ग्स फ्रॉम हियर एंड देयर।
आज अमजद अली खान का जन्मदिन है। वे एक प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक हैं जो अपनी वंशावली को सीनिया घराने से जोड़ते हैं और जिन्हें भारत का अग्रणी शास्त्रीय संगीतकार माना जाता है। 1963 में मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली अमरीका यात्रा की थी। इस यात्रा में पंडित बिरजू महाराज के नृत्य दल की प्रस्तुति के साथ अमजद अली खान का सरोद वादन भी हुआ था। इस यात्रा का सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह था कि खान साहब के सरोद वादन में पंडित बिरजू महाराज ने तबला संगीत दी थी और खान साहब ने कथक संरचनाओं में सरोद की संगति की थी। उस्ताद अमजद अली खान ने देश विदेश के अनेक महत्वपूर्ण संगीत केंद्रों में प्रदर्शन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया था। इनमें कुछ प्रमुख हैं रॉयल अल्बर्ट हॉल, रॉयल फेस्टिवल हॉल और कैनेडी सेंटर आदि। और वर्तमान में उस्ताद अमजद अली खान के दो पुत्र अमान और अयान सहित देश विदेश के अनेक शिष्य सरोद वादन की पताका फहरा रहे हैं और उन्हें पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन सम्मान, पद्म भूषण से भी सम्मान किया गया है। आइए सुनते हैं उनका ये शास्त्रीय संगीत।
Listeners, we are paying tributes to Ronald Gordon Honeycomb, a British newscaster, author, playwright and stage actor. Honeycomb was born in Karachi in British India. He was educated at the Edinburgh Academy and read English at University College, Oxford. Honeycomb completed national service with the Royal Artillery, mainly in Hong Kong, where he was also an announcer with Radio Hong Kong. Returning to the United Kingdom, Honeycomb embarked on an acting career which led to television and public prominence as a national newscaster. He later settled in Perth, Western Australia, where he continued to work in radio, television and theatre. Listeners, today is also the birth anniversary of Minjur Bhaktavatsalam, an independence activist, politician, who served as the Chief Minister of Madras State from 1963, 2nd October to 6th March 1967. Bhaktavatsalam studied law and practiced as an advocate in the Madras High Court and involved himself in politics and freedom movement from a very early age. Bhaktavatsalam was imprisoned during the Salt Satyagraha and the Quit India movement.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और सरबजीत को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in पर। नमस्कार।